हरे कृष्णा, आपको भाग के आना है, चल के नहीं आना है। और भी ऊपर कुछ लोग खड़े हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट इज बेटर इफ यू ऑल सिट ऑन दैट साइड। इन माताओं को बोलो प्लीज प्लीज सिट देयर, थोड़ा जगह बनाओ, जगह आप थोड़ा पास बैठो, पास में सब लोग नीचे बैठो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत सुंदर स्थान है, बहुत ही रमणीक स्थान है। सब लोग जरा प्रेम से पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योगमाया इज देयर, योगमाया प्लीज कम हियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्हाट आर दे डूइंग देयर? को लेके जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग पुकारो, सब लोग पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Jai Sri Radhe Shyam.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jaya Mudiraye.
There somebody is, I don't know who are
they. 5 or 6 people are there. हमको लगा कि चोर हैं इसलिए हमने पुलिस को भेजा लेकिन वो कोई और ही निकले. हरे कृष्ण. सब लोग यहाँ पर है हमारी टीम के BSc डिप्लोमा RGNM सब लोग यहाँ पर है. एवरीबडी इज देयर ना, नोबडी इज मिसिंग. क्योंकि आप लोग यहाँ पर खो सकते हो, ध्यान रखना, साथ में रहना हमेशा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. स्पीकर के पास जितने लोग बैठे हैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना होगा क्योंकि उसका तकलीफ होती है. अगर मैं भी स्विच ऑफ कर रहा हूँ. तो अभी हम श्री गोवर्धन के अंदर एक बहुत ही सुंदर स्थान में आए. इस स्थान में पहले कितने लोग आए हुए हैं? हरे कृष्णा, आधे से अधिक लोग नहीं आए हैं. तो जो पहले आ चुके हैं और जो अभी आए हैं इन सबका स्वागत है. हरी बोल हरी बोल हरी बोल. श्री गिरिराज गोवर्धन ये मोर के आकार में है. आप मोर को चलते हुए देखते हो ना, लेकिन अगर आप मोर को सोचेंगे कि वो उल्टा सोया हुआ है, मतलब उसकी आंखें ऊपर हैं, चोंच ऊपर है, पाँव ऊपर हैं, तो कैसे होगा वो मोर? वैसे गोवर्धन का शेप है और उसकी जो दो आंखें हैं उस मोर की, गोवर्धन रूपी मोर की, वो राधा कुंड और श्याम कुंड है. उसमें से आवाज आ रही है. वो राधा कुंड श्याम कुंड जो है उसकी आंखें हैं. एक काम करते हैं, इसको बाद में करते हैं, अभी तुम लोग जरा सेटिंग करो सबका डाइवर्शन. मान यहाँ पर सब देख रहे हो उधर उधर. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे. ये जो साउंड है ना, साउंड ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है. ये ध्वनि के माध्यम से ही भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ये ध्वनि के माध्यम से ही सृष्टि का निर्माण हुआ और इस ध्वनि के माध्यम से ही भगवान से संपर्क कर सकते हैं, है ना? इज दैट राइट? समझो कोई सोया हुआ है घर में, किसी बंद घर में, और घर को आग लगती है चारों तरफ, और आप उधर एक नोटिस लगाते हो, आग लग रही है यहाँ से बाहर निकलो। निकलेगा कि बाहर हो? नोटिस पढ़ो, आग लग रही है और भागो यहाँ से, ठीक है ना? अगर आप जोर से चिल्लाओगे, घंटी बजाओगे या कोई ऐसे कुछ ध्वनि करोगे, तुरंत ध्यान आपका आकर्षित होगा, है ना? तो ध्वनि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, और ध्वनि के माध्यम से ही हम संकट से बच सकते हैं, भगवान से संपर्क भी कर सकते हैं। इसलिए यात्रा में भी ध्वनि बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्वनि सही है तो सबके सबके मन में भगवान की वाणी प्रवेश करेगी कान के माध्यम से, और ध्वनि में गड़बड़ है जो अभी भी गड़बड़ है उसके अंदर, तो क्या होगा? कितनी भी अच्छी कथा होगी तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। इसलिए हमारी महाराज की यात्रा में भी साउंड सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द यात्रा। नहीं है, सही नहीं है अभी तो, आई डोंट लाइक दिस। हमारे मंदिर में हरे कृष्णा बंद के ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे मंदिर में जो साउंड सिस्टम है, आपको देख समझना चाहिए इस बात को कि कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। हमारे गुरुदेव ने उस साउंड सिस्टम के जो स्पीकर है ना, उसको मंदिर बना के उसके अंदर रखा है। मतलब मंदिर के अंदर भी मंदिर है, बहुत सारे ऐसे टेंपल जैसे अरेंजमेंट जो है उसे दीवार पे लगा के रखा है, उसके अंदर दीपक भी लगा के रखा है, उसके अंदर स्पीकर रखा है, क्योंकि वो ध्वनि क्षेपक जो है, वो जो स्पीकर है, वो भगवान की वाणी को प्रसारित करता है। द साउंड बॉक्स, स्पीकर बॉक्स इज द वन हु इज ट्रांसमिटिंग द डिवाइन साउंड वाइब्रेशन ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड द स्टोरी ऑफ द लॉर्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट इज वर्शिपेबल। उसके बाद वो साउंड सिस्टम कैंसिल की गई और नहीं लाई, स्मॉल स्पीकर्स विद लॉर्ड साउंड, वो स्पीकर लाए गए। लेकिन फिर भी वो जो स्पीकर है उसको अभी तक मंदिर में रखा है। ये उसके लिए मैसेज ये है कि साउंड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जब जब करते हैं थोड़ी, ये सही नहीं है, थोड़ी ना प्रॉपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये छोड़ दो उसको, ऐसे इसको बंद करो, इसको खाली बंद कर लो, बस रहने दो उसको, टाइम नहीं मिलेगा खुलना वापस लगाना। सो और इस ध्वनि के माध्यम से ही हम सबका उद्धार हो सकता है। ध्वनि के माध्यम से भवता भगवान अवतार लेते हैं, कली काल नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम के ध्वनि के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। जब नाम उच्चारण करते हैं तो नाम के ध्वनि के माध्यम से वो हमारे कान में प्रवेश करते हैं और वहाँ से हृदय में प्रवेश करते हैं और वहाँ से आत्मा की शुद्धि होती है और तब जाकर भगवान के अनुभूति को हम समझ सकते हैं। तो ध्वनि जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। जैसे ओमकार, ओमकार जो है उसी ओमकार के माध्यम से पूरे विश्व का निर्माण हुआ है। और हर एक मंत्र जो हम उच्चारण करते हैं उसके पहले ओम लगता है, उसको बीज मंत्र कहते हैं। बीज मंत्र का बीज है ओम, और बहुत सारे और बीज भी होते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि आंखों से हम धाम को देख नहीं सकते, हम अपने कानों के माध्यम से धाम को देख सकते हैं. यू कैन नॉट सी द धाम विथ योर आईज, यू हैव टू सी द धाम विथ योर ईयर्स. कान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है. आंख से लग रहा है बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, पेंटिंग अच्छा किया है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, बहुत साल टिकेगा ऐसा लगता है आपको, लेकिन जब कान से सुनेंगे इसके बारे में तो उसकी महिमा आपको मालूम पड़ेगी. अरे वो बहुत बढ़िया टैंक है वाटर का, स्विमिंग कर सकते हैं, पानी भी अच्छा है, बाकी जगह गंदा था यहाँ ठीक है, ऐसा आपको लगेगा. लेकिन जब आप कथा सुनेंगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि ये क्या जगह है, उसके बारे में आपको जानकारी होगी. समझो आप में से एक व्यक्ति समझो ऐसे बैठा है कथा में और कुछ देर बाद हम बताएंगे, एक्चुअली वो व्यक्ति जो है ना वो सेंट्रल मिनिस्ट्री का चीफ सेक्रेटरी है. तुरंत आप दोबारा मुड़ के देखेंगे उसको, है ना. मैं कहूँगा हमारे बीच में ऐसे एक व्यक्ति है जो हमारे केंद्र मंत्रालय की चीफ सेक्रेटरी है. सब लोग देखेंगे कौन है कौन है, फिर मैं कहूँगा कि वो व्यक्ति है. खड़े हो जाओ प्लीज़, आप स्टैंड हो जाओ. तो सब लोग उनको मुड़ के देखेंगे. उसके पहले भी आपने उसको देखा होगा शायद, लेकिन जब उसके बारे में सुनेंगे आप दोबारा, आप उसको दूसरी दृष्टि से देखेंगे. इसराइल का अगर चीफ मिनिस्टर अब यहाँ पर आता है और आप जानते नहीं उसको, तो आपके बाजू से चला जाएगा तो समझेंगे नहीं आपको. लेकिन कोई आपको बताएगा कि इसराइल का ये प्राइम मिनिस्टर है, तुरंत आप उसको सम्मान देंगे, उसको आदर से देखेंगे. तो व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हम ध्वनि से समझते हैं, आंखों से समझते हैं या समझेंगे इसका गारंटी नहीं है. समझो आप, हम आपको किसी मंदिर में लेके जाएंगे और एक मूर्ति दिखाएंगे, वो काले रंग की मूर्ति, बड़ी बड़ी आंखें ऐसी होगी, समझ में नहीं आता आपको आएगा. लेकिन जब सुनेंगे उसके बारे में कि ये बलराम जी हैं, इनके हाथ में क्या है, हाथ में वारुणी है, बाजू में कौन है, वो रेवती देवी है, और ये कहाँ से आए कैसे प्रकट हुए, तो आप दोबारा देखेंगे तो हाँ. वैसे अभी आप मंदिर में गए ना, उनके नीचे आपने देखा, आप बता सकते हैं क्या देखा आपने मंदिर में? हाँ, उसने सही देखा है बिल्कुल. प्रभुपाद जी कहते थे कि यू सी बट यू डोंट सी. एक सुंदर कहानी है उसके. प्रभुपाद जी मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में राउंड लगा रहे थे और कुछ सुबह 6:30 का समय था, थोड़ा सा उजाला हो चुका था. प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, राउंड ले रहे थे, कुछ भक्त भी साथ चल रहे थे. तो एक जगह पर आए, उन्होंने बोला यू सी बट यू डोंट सी. तो भक्तों को लगा कि प्रभुपाद को बड़ी गहन बात कर रहे हैं, बड़ी कुछ ऐसी रहस्य वाली, थोड़ी उत्कट, कोई ऐसे अंतरंग, कोई कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट बात कर रहे हैं. क्या होगा, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं भगवान के, पता नहीं उनके मन में क्या अनुभूति होगी, अभी साक्षात्कार हो गया होगा, क्या देखते होंगे वो. फिर दोबारा वहाँ घूम के आए, वहीं खड़े हो गए जो पहले जगह खड़े थे, बोले यू सी बट यू डोंट सी. सबको एकदम आश्चर्य हुआ, अरे बाप रे, शायद कोई बहुत बड़ी बात कह रहे हैं. तीसरी बार राउंड लिया उन्होंने, उधर जाके खड़े हो गए और रुके, सबको देख के बोले यू सी बट यू डोंट सी. प्रभुपाद बोले प्रभुपाद जी क्या है वो चीज़? बोले दिन ऊपर आया है, अब तक ट्यूबलाइट चालू है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दिन ऊपर हो गया है, ट्यूबलाइट बंद करनी चाहिए, आप देख रहे हो फिर भी आप देख नहीं रहे हो. तो कोई बड़ी रहस्य वाली बात नहीं थी, सिंपल बात थी बहुत. तो वैसे ये मंदिर में आपने सबने देखा होगा, ये मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें राधा रानी भगवान के सामने बैठी है, नीचे पीठ करके बैठी है, उनको साइड में खड़ी नहीं है, नीचे बैठी है, नीचे लेवल पे बैठी है, और उसके हाथ में एक आईना है और आईने में वो खुद को देख रही है. ऐसा लगता है आपको? नहीं, वो आईने में पीछे बैठे हुए कृष्ण को देख रही है, और कृष्ण के दाहिने हाथ में क्या है? कंघी. और एक्चुअली उनके बाएं हाथ में राधा रानी के बाल होते हैं एक्चुअली, तो वो उनका श्रृंगार कर रहे हैं. राधा रानी का भगवान कृष्ण जो है श्रृंगार कर रहे हैं, और श्रृंगार करते समय जब आप छोटी सी लड़कियां थी तो आपकी माता आपको बाल बनाती थी कि नहीं? शायद अभी भी बनाती होगी, आई डोंट नो, इट्स पॉसिबल. तो आपको माँ के आगे बैठना पड़ता है अपने पीठ करके, फिर वो बाल बनाएगी आपके, है ना. तो सब लड़कियां क्या करती है, अपने आप को देखती है आईने में, ठीक से बनाना, ये बराबर नहीं बना, ठीक से बनाओ, दोबारा बनाओ, दोबारा बनाओ. राधा रानी को उतना समय भी कृष्ण का चेहरे का दर्शन नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो उतने समय के लिए भी व्याकुल है, इसलिए वो आईना लेकर उनके मुख कमल को निहार रही है, ऐसा भाव है यहाँ पर। और वो क्या कर रहे हैं कि ये कुसुम वन है, ये भगवान का फूलों का वन है, अनेक वनों में से एक वन है ये, बहुत सुंदर वन, उसका पुष्प वन कह सकते हैं, सुमन वन कह सकते हैं, कुसुम वन कह सकते हैं। तो वहाँ पर सब गोपियाँ भगवान के लिए फूल बिनने को आती हैं। फूल भी कैसे, भगवान के लिए हमें बिना जा रहा है, इसलिए वो और अधिक सुंदर बनते हैं और खुशबूदार बनते हैं और दर्शनीय बन जाते हैं और अपने आप को उत्साह से क्या कहते हैं उसको खिल जाते हैं। वो जानते हैं कि राधा रानी अभी हमें चुनेगी, चयन करके माला बनाएगी और कृष्ण के लिए अर्पण करेगी। तो राधा रानी का एक भाव है, फूलों का दूसरा भाव है, दोनों का मिलकर भगवान के आनंद के लिए सेवा की जा रही है ना, ये सेवा का भाव है। हिरण भी चल रहे हैं तो वो आँखों से भगवान को देख रहे हैं, वो वर्णन शास्त्र में आता है कि वो आँखों से भगवान की आरती उतार रहे हैं, ना उनके पास कोई अगरबत्ती है, ना कोई दीपक है, ना कोई साधन और है उनके पास, कोई मैच बॉक्स है, कोई कुछ भी नहीं है उनके पास, केवल नेत्रों से सेवा कर रहे हैं। वैसे फूल भी केवल अपने आप को समर्पित करके भगवान के चरणों में भगवान की सेवा कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, देखो हर वस्तु यहाँ की चेतन है, फूल भी चेतन है, पंछी भी चेतन है, पत्थर भी चेतन है, सब कुछ चेतन है यहाँ पर, एवरीथिंग इज अ लाइव आइटम, सजीव है सब कुछ। तो राधा रानी को सब लोग मिलकर यहाँ फूल बिनते हैं। तो अचानक एक दिन माली आता है, माली होता ना गार्डनर, डंडा लेके आता है, डंडा पटक पटक के आता है, उसके डंडे की आवाज़ सुनकर उसको देखकर सब डर जाते हैं। तो माली ने क्या किया, ध्वनि किया ध्वनि, सब लोग फूल बिनने में व्यस्त हैं, पूरे एकदम मग्न हो गए हैं, अगर उनको मैं आ रहा हूँ ये जताना है तो पुलिस क्या करती है, सीटी बजाती है या अपने जीप का सायरन चलाती है, तो सबको पता चलता है कि पुलिस आ रही है। उस तरह से उन्होंने डंडे को पटक के सबका ध्यान आकर्षित किया अपनी ओर के, मैं आ रहा हूँ। सब गोपियाँ भागने लगी, बोले राधा रानी भागो भागो माली आ रहा है। सबके कपड़े इतने मग्न हो गए थे, कांटों में फंसे हुए थे फूल बिनते बिनते, सबने अपने अपने कपड़े निकाल लिए अटके हुए, झटाझट फूलों को संवारा, कुछ फूल गिर गए, कुछ रह गए चुन्नी में, भाग गए सब लोग। और भागते भागते पुकार रहे, अरे श्री जी, अरे विश्वभानु नंदिनी भागो माली आ रहा है। तो राधा रानी बड़ी व्याकुल हो गई और कोशिश किया उसने भागने का, लेकिन उसके कपड़े जो थे वो बहुत ज़्यादा अटके हुए थे कांटों में, बहुत कोशिश करती रही वो निकलने का, यहाँ से निकाला तो वहाँ अटक गया, वहाँ से निकाला तो यहाँ वहाँ अटक गया। कुछ फूल गिन गए, कुछ फूल रहे, और पसीना आया उसके कपाल पर, डर के मारे कभी पकड़े जाएंगे। सखियों की आवाज़ जो है कम 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 होती जा रही है, पुकार की आवाज़ जो है दूर जा रहा, दूर गए तो और कम कम हो रही है, अकेले रह रही है। और इतने बाद में वो फंसी हुई अवस्था में माली उनके सामने खड़ा हो जाता है ऐसे, तो एकदम डर के मारे राधा रानी कांपने लगती हैं, बड़ी बड़ी आंखें करके उनको घूरता है वो और डर जाती है, सब उसके फूल गिर जाते हैं मट्टी में। फिर वो अचानक हंस पड़ता है, हंस देता है और अपना भेष उतार देता है, देखते हैं तो क्या वो श्याम सुंदर है। तो एकदम अरे आप हैं, ओ मैं तो डर गई थी, पता नहीं क्या होने वाला है, अरे लेकिन आपने ऐसा क्यों किया, हर समय तो आप सबके साथ में मिलते हैं, हमको सबको साथ में लेकर मिलते हो, आज आपने ऐसा क्यों लीला किया। उन्होंने कहा कि आज हमें आपके साथ अकेले मिलने का मन था, इसलिए हमने सब गोपियों को भगा दिया। बहुत चतुर है हमारे श्याम सुंदर जी, अलग अलग आइडिया बनाते हैं अलग अलग काम करने के लिए, है ना। चलो ठीक है, अभी जो हुआ सो हुआ, अभी आप आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, एकांत है, वन है, क्या करते हैं उस फूलों का, ये फूल तो आपके लिए बिनते हैं, रोज हम यहाँ से बिन के लेके जाते हैं, फिर क्या करते हैं, तो माला बनाते हैं आपके लिए, आपको अर्पण करते हैं। तो चलो कहाँ चलेंगे, अभी तो फूल सब नीचे गिर गए हैं, तो क्या करेंगे, उसको हम जमुना जी में धोते हैं रोज जाकर, तो चलो जमुना जी जाएंगे। तो जमुना जी तो बहुत दूर है यहाँ से, और जमुना जी के तक हम अकेले चलेंगे तो कितना संकोच होगा, सब दुनिया देखेगी हमको। तो कृष्ण ने कहा क्या बात है, उसमें जमुना जी को ही बुला लेते हैं, इसमें क्या है, जमुना जी हमारी बहुत अच्छी प्रेयसी है, हमारे कहने पर तुरंत यहाँ प्रकट हो जाएगी वो। तो भगवान वन से अंदर आए, उन्होंने मुरली से गड्ढा खोदा, छोटा सा नहीं इतना बड़ा, तो देख रहे हैं ना आप। और जमुना जी को आह्वान किया, जमुना जी यहाँ प्रकट हो गई। जमुना जी ने अपना जल भर दिया उसके अंदर और इतना सुंदर सरोवर बना। क्या नाम पड़ा उसका? कुसुम सरोवर। फिर क्या हुआ उसके बाद? भगवान ने, राधा रानी ने मिलकर इन फूलों को यहाँ धोया और राधा रानी ने इन फूलों की माला बनाने के बदले में भगवान ने इन फूलों की माला बनाई। भगवान ने अलग अलग गुच्छ बनाए फूलों के और यहाँ ही बैठ के राधा रानी के बालों का भगवान ने फूलों से श्रृंगार किया। ये जगह है वो प्रेम की जगह है। हा? सेवक जो है वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान जो है वो सेवक की सेवा करना चाहते हैं। दोनों कॉम्पिटिशन है हमेशा। सेवक भगवान का गौरव करना चाहता है, भगवान सेवक का गौरव करना चाहता है। हमेशा कॉम्पिटिशन बनी रहती है, कब भगवान जीतते हैं कब भक्त जीतते हैं, लेकिन अक्सर भक्ति जीत जाते हैं क्योंकि सेवक के पास शक्ति ऐसी होती है कि वो अपनी सेवा के प्रभाव से, सेवा के भाव से जिनकी सेवा कर रहा है उसको भी जीत लेता है वो, और जो जिसकी सेवा हो रही है वो हार जाता है अपनी सेवा करने वाले के भाव के कारण। तो यहाँ पर ऐसी लीला है कि भगवान ये दिखा रहे कि मेरे भक्त मुझे कितने प्रिय हैं, जो मेरी सेवा करते हैं मेरे लिए कितने प्रिय हैं और मैं कैसी उनकी सेवा करना चाहता हूँ। इसी भाव से भगवान हाथ में कंघी लिए राधा रानी के बालों को संवार रहे हैं और उनको फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं। तो ऐसी सुंदर स्थली है ये। ये स्थली इतनी उत्कट है, इतनी सुंदर है कि जब भगवान के, चलो उसके पहले की कथा बताते हैं आप। जब गोपियाँ यहाँ पर व्याकुल थी, भगवान मथुरा चले गए थे, फिर द्वारका चले गए, बोल के गए थे कि परसों आएंगे, शीघ्रम आगस्य, हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन वो आए नहीं। दो दिन हुए, 20 दिन हुए, 20 महीना हो गए तो भी नहीं आए, शायद 200 महीना भी हो गया फिर भी नहीं आए, 100 साल के ऊपर हो गया, 112 साल हो गया फिर भी नहीं आए। तो बीच में एक बार उनको खबर तो मिलती थी कि गोपियाँ बहुत व्याकुल हैं, वो भी खुद व्याकुल थे द्वारका में, अपनी पत्नियों का भोजन खाते खाते भी रोते रोते खड़े होते थे। पत्नियां बोलती थी क्या हो गया आपको, खाने में कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ नमक ज़्यादा कम कुछ हुआ, मसाला कम ज़्यादा हो गया, अचानक रो क्यों रहे हैं आप? बोले मुझे गोपियों की याद आ रही, मैया की याद आ रही, हमारी सेवा में कुछ कमी है क्या? नहीं, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं, आपका भाव भी बहुत सही है, लेकिन आप कितना भी प्रेम से मेरे लिए भोजन बनाते हो लेकिन वो स्वाद आपके भोजन में नहीं है जो मेरी मैया, जो सख्त खाना हुआ करता ना, सख्त खाना जैसे लड्डू होता है बूंदी का, बहुत कड़क लड्डू, वो बच्चा तोड़ नहीं पाता है तो माता उसको तोड़ के देती है। और हमारी यशोदा मैया क्या करती है, ऐसा सख्त आइटम होता है ना वो खुद अपने मुँह में डालती है, उसको तोड़ती है, उसको नरम करती है, फिर मुँह से निकाल के अपने बेटे को खिलाती है। तो कृष्ण भगवान अभी द्वारकाधीश बने हुए हैं, वो कहते हैं आपने 56 भोग तो इतने प्रेम से बनाए हैं, आप तो भाग्य लक्ष्मी हैं, लेकिन फिर भी मैया के मुंह में प्रेम से नरम किया हुआ जो भोजन है, जो मुंह से निकाल के वो मुझे खिलाती है, उसका स्वाद तो इसको नहीं आ सकता है, और मुझे इसी की याद आती रहती है। फिर रात को शयन करने जा रहे हैं, सो रहे हैं, तो रुक्मिणी देवी साथ में है, एक में सत्यभामा है, एक पैलेस में मित्रविंदा है, ऐसे 101 बढ़कर लक्ष्मियाँ उनके साथ में पत्नी के रूप में विराजमान है, सुख ही सुख है। बीच रात में उठते हैं, बिस्तर में खड़े होकर रोने लगते हैं। पत्नी सोच रही क्या हो गया, कुछ नहीं गोपियों की याद आ रही है। तो सोचती है क्या है तुम्हारा, गोपियों का क्या रिश्ता है, ऐसा क्या गोपियों के साथ अपना प्रेम है जो हम नहीं कर सकते, मतलब ये उनको ईर्ष्या नहीं हो रही है, द्वेष नहीं हो रहा है, वो सोच रहे कि हमको भी वैसा करना चाहिए जैसे इनको सुख मिले, अगर गोपियों की सेवा से उनको सुख मिलता है तो हम भी उतना ही सुख उनको देना चाहते हैं, और हम दे नहीं सकते इसलिए हमको दुख हो रहा है। तो कहते हैं कि हम आपको बताएंगे एक दिन कि इतना मैं क्यों प्रेम करता हूं उनसे। तो एक दिन भगवान ने ऐसा नाटक किया या कुछ भी बोलो आप, भगवान ने कहा कि हमको सर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। तो द्वारकाधीश है, उनके पास तो हजारों हकीम वैद्य सब रेडी रहते हैं, सब भाग के आए, द्वारकाधीश को सर दर्द हो रहा है। नहीं, दिस इज वेरी, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मैडम शुभांगी टू understand the psychology of this gopis, huh? Please concentrate very nicely. What is that consciousness? क्या भावना है गोपियों की जो भगवान को इतना पागल बना देती? तो भगवान को सरदर्द हो रहा है, सब लोग आ रहे भाग भाग के, रुक्मिणी सब लोग, सब पत्नियां खड़ी है कि हमारे स्वामी जी, हमारे स्वामी नाथ हमारे व्याकुल हैं, सबको फटाफट बुला लेती है, सब लोग अपना अपना इलाज करते हैं, सब लोग फेल हो जाते हैं, बोले कुछ असर नहीं हो रहा है, तो फिर क्या किया जाए? अरे हमने तो उनको पूछा नहीं कि आपका तकलीफ दूर करने के लिए कुछ दवा आपको पता है क्या, आप बताओ खुद ना, बोले तो आपने पूछा नहीं, इतने बताया नहीं, आप लोग कोशिश कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ, तो आप बताओ बताओ क्या तकलीफ, कैसे आपको हम कष्ट में दूर कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि जो भी मेरे मुझे अपना अपने को मेरा भक्त मानता है, जो व्यक्ति खुद को मेरा भक्त समझता है, उसके चरणों को धोकर उसकी रज अगर मिले मुझे, वो मेरे सर पे लगाया जाए, तो सर दर्द मेरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो तो द्वारका में तो बहुत भक्त है हमारे, नारद मुनि को भेजा उन्होंने कि जाओ, नारद मुनि गए सब जगह, सब द्वारका में गए, सब रानियों के पास गए, रुक्मिणी के पास गए, सब पीछे हट गए एकदम चार कदम, अब तक सब व्याकुल थे कि उनका सिर दर्द था, ठीक होना चाहिए, सब द्वारका में गए, सब सेनापतियों के पास गए, मंत्रियों के, सब भक्त है भगवान के वहाँ के, सब घरों में गए, सबने कहा नहीं नहीं ये तो हमारे स्वामी हैं, हमारे नाथ हैं, हमारे सेव्य है, हम उनकी सेवा करते हैं, उनको उनकी रज हम लेते हैं अपने सर पे, और हमारे पैरों की रज उनको देना, रे हाय हाय मर जाए हम लोग सब लोग, और ऐसा करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, नरक की यातना मिलेगी हमको, दंड मिलेगा उसके लिए। तो सब लोग हट गए, अब तक सब लोग आगे आगे थे सर दर्द को ठीक करने के लिए, सब लोग पीछे पीछे हटने लगे। नारद में निराश होकर लौट के आए, द्वारकाधीश भगवान सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, सर उनका फटा जा रहा है। तो फिर नारद मुनि ने कहा भगवान अभी क्या करें? तो भगवान ने कहा ऐसा करो, तुम वृंदावन चले जाओ, ब्रज में जाओ, और वहां पर ये दौंडी लगाओ, ऐलान करो, बोलता ना वो डम 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 कर सब इकट्ठा होते हैं, फिर वो अनाउंस करते हैं कुछ बातें, तो वो अनाउंस करते हैं कि द्वारकाधीश कृष्ण भगवान को सरदर्द हो रहा है, और उनका ये कहना है कि जो भी उनके प्रेमी भक्त हैं वो अगर चरण को खुरच खुरच कर धो धो कर रज देंगे तो वो रज से उनकी सरदर्द लगाने पे ठीक हो जाएगी। तो क्या देखते हैं, हजारों लाखों करोड़ों गोपियां भाग भाग के आ रही है, भाग भाग के, हमारी लो हमारी लो हमारी लो हमारी लो, सब लोग अपने खुरच खुरच कर निकाल रहे हैं, फिर जाके जमुना जी में पैर डुबा रहे हैं, फिर मट्टी में चल रहे हैं, फिर लगी मट्टी को फिर खुरच के निकाल रहे हैं, फिर जमुना जी में जा रहे हैं, फिर पैर को गीला कर रहे हैं, फिर मट्टी को लगा रहे हैं, फिर उसको मट्टी को निकाल रहे हैं, इतना बड़ा ढेर जमा हो जाता है, और भी उधर स्टैम्पीड हो रहा है, सब गोपियां बोल रही हमारा लो हमारा लो हमारा लो। नारद मुनि बड़े अचंभित हो जाते हैं, अरे क्या पागल हो गए आप लोग, अब जानते हो उसका अर्थ क्या है, आप सब लोग नरक में जाओगी, आपके चरणों की रज अगर ठाकुर जी को लगाई गई तो आप सब लोग अनंत काल तक नरक यात्रा भोगोगी, आपको मंजूर है क्या, आप लोग कुछ दिमाग सही में जगह पे है ना आपका दिमाग? तो गोपियां कहती हैं ठीक से सुन लो, क्या गोपियां कहती हैं, वो कहती हैं कि अगर हमारी, अच्छा उसके पहले नारद मुनि कहते हैं कि अरे थोड़ी सी रज चाहिए, थोड़ी सी, आपने तो ढेर लगा दिया यहां पर, अभी इसको लेके जाने का ऐसा ये भी प्रॉब्लम मेरे पास है, वो कहते हैं कि रख लो आगे भी काम आएगी, हर बार फिर यहां पर इतना दूर आना नहीं पड़ेगा ना, स्टॉक में रख लो, आगे कभी फिर दोबारा सरदर्द हो गया तो लगा लो उसको, फिर दोबारा इतनी चक्कर काटने की जरूरत क्या है, इतना टाइम बर्बाद हो रहा है, बीच में हमारे ठाकुर जी कितने परेशान होंगे, इसलिए वहीं रखो, वहीं तुरंत लगा दो, खत्म बात ना। उसके बाद में बात होती है कि पता है कि आपको क्या होने वाला है, तो गोपियां कहती है कि हमारे चरणों की रज लेने के पश्चात अगर उनका सरदर्द ठीक होने की बात नहीं कर रहे हम, एक क्षण के लिए बेवर कम हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उस उनके सुख के लिए हम जन्म जन्मांतर तक नरक यातना भोगने को तैयार हैं, वी डोंट माइंड, ले लो ले तो नारद जी संकोच मत करो, ले लो, हमारे जीवन में वैसे है ही क्या उनके अलावा, उनकी खुशी उनका संग तो नहीं मिल रहा है, उनकी सेवा मिल रही है, उनकी सेवा मिलने के बाद में अगर नरक वास मिलता भी है, हु केयर्स फॉर दैट, खुद को कष्ट हो रहा है लेकिन हमारे ठाकुर को आनंद हो रहा है, उससे बड़ी चीज हमारे लिए कुछ नहीं है। वैसे भी हम तड़प रहे हैं उनके उनके विरह में, तो और तड़पेंगे नरक में जाके, लेकिन ये तो खुशी मिलेगी ना कि वो हमारे वजह से थोड़ा बहुत सर दर्द में उनको आराम मिला। नारद मुनि समझ नहीं पाए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए और अचंभित होते हुए दो चार लोगों को लेकर वो ढेर सारा मट्टी जो है वो लेके जाते हैं द्वारका में, और भगवान बैठे हुए सर पे हाथ पकड़ के, तब रानियां बैठ के व्याकुल है वहाँ पर, सोच रही हैं कैसे किया जाए। तो नारद मुनि आते हैं इतना बड़ा ढेर लेके, और तुरंत उसमें से कुछ निकाल के भगवान को सर को लगाते हैं, भगवान ठीक हो जाते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने ये कैसे लाया। और गोपियाँ ऐसे कुछ बोल रही थी, भगवान ने जानबूझ के सभी रानियों के सामने पूछा कि कहाँ से लाया तुमने, तो सब उन्हें वर्णन किया कैसे मैं गया, दौंडी लगाया, कैसे हजारों लाखों करोड़ों गोपियाँ आई धक्का मुक्की करके, अपना रज बार बार पानी में भिगा कर दिया। तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उनकी अगर सर दर्द को एक क्षण के लिए भी राहत मिलेगी तो मैं हम सब लोग जन्म जन्मांतर तक नरक की यात्रा भोग सकते हैं। नारद मुनि ये कहते हैं और भगवान सब रानियों को ऐसे एक लाइन से देखते हैं, सबके आंखों में देखते हैं, सब अपनी नजरों को झुका देते हैं, तो समझ जाते हैं कि रात में ये क्यों उठते हैं उनकी याद सर, हाँ रात रात में क्यों उठकर रोते हैं उनकी याद में, क्योंकि हैं हम भी प्रेम करते हैं उनके ऊपर, लेकिन उनका जो प्रेम है वो थोड़ा सा अलग है, वो अपने को नष्ट करने के बाद भी उनको प्रेम करना चाहते हैं, अपने आप को मर मिटा कर भी उनको सुख देना चाहते हैं। तो वो जो भगवान की रानियां हैं, वो भगवान की रानियां बड़ी दुखी हुई जब भगवान, सॉरी वो एक बात है सॉरी, तो ऐसे गोपियों को संदेश देने के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेज दिया कि उद्धव जी आप जाओ जरा, हमारे गोपियां बहुत व्याकुल हैं, उनको जरा मैसेज दे के आओ, हमारा थोड़ा उनको राहत मिलेगा अपने सब। सो उद्धव जी आए, बड़े ज्ञानी थे वो, भगवान के कजिन ब्रदर थे, भगवान के सेनापति थे, भगवान के प्रमुख मंत्री थे, भगवान के सलाहकार थे, भगवान के मित्र थे, सब कुछ थे वो, हर चीज़ थे, ऑफिशियल भी था अनऑफिशियल सब कुछ था। तो सोचे कि भगवान के गोपियाँ व्याकुल है तो हम उनको जाके योग सिखाएंगे, ज्ञान देंगे, और ज्ञान सुनने के बाद विरक्ति मिलेगी तो दुख से मुक्त हो जाएंगे। दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको आसक्ति है ना, आसक्ति है, जिस पर आसक्ति है वो चीज़ चली गई है, इसलिए दुखी है। तो मैं उनको ज्ञान दूंगा, परमात्मा का ज्ञान दूंगा और उनको मुक्त करूंगा। ये सोचकर आते हैं, नंदगांव पहुंचते हैं यशोदा मैया से मिलने के लिए। किसी को पूछते हैं कि नंदगांव का घर कहाँ है नंद बाबा का, सब व्याकुल हैं, सब उदास हैं, सब दुखी हैं। तो वो बोलते हैं, एक आदमी बोलता है कि ये दो नदियां बह रही है ना, इसके किनारे किनारे से चलते जाओ, ये नदियां पहाड़ों से आ रही है, दो नदियां आ रही हैं, इसके किनारे किनारे चलोगे तो नंदगांव के नंद भवन पहुंच जाओगे। अच्छा चलो चलते हैं, किनारे किनारे चल के गए, ऊपर देखा तो ये दो नदियां क्या है, एक नदी नंद बाबा के आंसुओं की है और एक यशोदा मैया के आंसुओं की है। जब से कृष्ण गए हैं तब से रोना छोड़ा ही नहीं उन्होंने, तब से रो रहे हैं, निरंतर अश्रु बह रहे हैं। तो क्या बोलेगा वो, दंग रह गया वो, बोले क्या उनका मैसेज दूंगा मैं, क्या ज्ञान दूंगा, क्या उनको सांत्वना दूंगा। फिर गोपियों से मुलाकात होती है, तो गोपियां कहती हैं कि हम आपसे यहाँ से बात नहीं कर सकते। पहले उनको लगा कि ये कृष्ण ही है, क्योंकि वो नीले रंग के थे, रथ में बैठ के आ रहे थे, उनको लगा कृष्ण ही आ रहे, बड़े खुश हो गए, भाग भाग के गए, देखा तो ये कृष्ण ही है, कोई और है, तो शर्मा जाते हैं वो। तो गोपी को उनको बात करने का प्रयास करते हैं, तो बोलते यहाँ नहीं बात करेंगे, आपको एकांत में आना होगा। तो एकांत में आकर उसका बड़ा तो लंबा संवाद है, भागवत में दिया है, यहाँ पर हम नहीं बोल सकते अभी, लेकिन सारांश में कहा जाए तो उन्होंने अपने दिल की बात जो है भगवान के प्रति व्यक्त की वहाँ पर। बोलते हम उनको भूलना चाहते हैं, क्योंकि लगता है वो नहीं आएंगे, अभी रानियों में मन लग गया उनका अभी, और हम यहाँ व्याकुल हैं, हम उनको भूलना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं उनको भूलने की, लेकिन वो टेढ़े हैं और उनको हृदय में फिट करने के लिए हम भी हृदय में टेढ़े हो गए, अभी उनको निकाल नहीं सकते, वो अंदर से इतने फिट हो गए हृदय में कि वो निकल नहीं सकते। ऐसे उन्होंने बहुत अजीब बातें की जो किसी को समझ में नहीं आती कि ऐसा प्रेम कैसे हो सकता है। तो उद्धव जी बेचारे व्याकुल हो गए, बोले मैं क्या उनको ज्ञान दूंगा, मैं कुछ सोच के आया था और देखा यहाँ पर तो अलग ही सीन है कुछ यहाँ पर, मैं तो तुच्छ हूँ इनके सामने। मैं सोच रहा था कि मैं इतना अच्छा भक्त हूँ भगवान का इतने पास में रहता हूँ, मैंने तो सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है, भगवान के इतने पास में रहने का मौका मिल रहा है मुझे। लेकिन ये तो भगवान से इतना दूर रहने पर भी भगवान के कितने पास हैं ये, मैं तो भगवान के शरीर से इतना निकट हूँ, हर तरह से उनका संग प्राप्त करता हूँ, और ये भगवान से मिलो दूर हैं, लेकिन मिलो दूर होने पर भी भगवान से कितने पास में है ये, इतना निकट सानिध्य उनका, इतना प्रेम है उनका। तो मैं सोचता हूँ मेरा था, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं है प्रेम उनके सामने। तो बड़े वो क्या कहते हैं उसको, बहुत अनुभूति उनको हो गई, अजीब तरह की, बड़े नम्र हो गए वो, और फिर लौट गए और कृष्ण को सब बताया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ यहाँ पर, पूरा रिपोर्ट दिया उनको और कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? मतलब मैं ब्रज में जा रहा हूँ। क्यों, अभी तो हो गया ना काम तुम्हारा? नहीं नहीं, मुझे ब्रज में जाना है। क्यों जा रहे हो? क्योंकि मैं ब्रज में जाके तपस्या करना चाहता हूँ। तपस्या? क्यों तपस्या करना है? किसको प्राप्ति करना चाहते हो तपस्या करके? बोले नहीं नहीं, मुझे ना ये महसूस हो रहा है कि मुझे ये गोपियों के चरणों की धूल चाहिए, अगर इनके चरणों की धूल लूंगा ना तो शायद इनके पास जो प्रेम है उसका थोड़ा सा प्रेम मुझे भी मिल सकता है, लेकिन अगर मैं उनको चरणों की रज मांगूंगा तो संकोच करेंगी, क्योंकि भगवान का मित्र है, सेनापति है, भगवान का इतना बड़ा साथी है ये, तो अपराध मानेंगी, वो देंगी नहीं संकोच से, और मैं ना ही उनको अपने संकोच में डालना चाहता हूँ। बड़ा आदमी बोले छोटा आदमी का पूछेगा तो संकोच होगा ना उसको, मैं ये संकोच भी उनको देना नहीं चाहता। लेकिन मैंने देखा है कि जब गोपियाँ चलती हैं तो वो तृण के पत्ते के ऊपर पाँव रखने में संकोच नहीं करती, चलती है वन में तो कई सारे तृण के पत्ते होते हैं, उन पर पैर रख के आराम से चलती रहती है। तो मुझे अभी वो तृण का पत्ता बनना है। दिस इज उद्धव साइकोलॉजी, उद्धव टिपिकल साइकोलॉजी। वो कह रहे हैं कि मुझे तृण का पत्ता बनने के लिए तपस्या करनी होगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे भला कोई ऐसी तपस्या ऐसे करता है क्या? तपस्या तो हम जिस पद पे है उससे ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए करते हैं, ऊंचे पद से नीचे आने के लिए कोई कोशिश करता है क्या? आपको HOD से एक क्लर्क बनना है तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए, लेकिन ये जिस उच्च पद पर भगवान के सामने बैठे हैं उनसे छोड़कर भगवान से दूर जाकर तृण का पत्ता बनना चाहते हैं ताकि उनको गोपियों के चरणों की रज मिले। और यहाँ पर उद्धव जी आए हैं इस कुसुम सरोवर के उस तरफ और वहाँ पर उन्होंने तपस्या की है, और बहुत देर तपस्या करने के बाद में उन्होंने यहाँ पर तृण के पत्ते का जन्म प्राप्त किया। एक सेकंड है, तो ऐसी अद्भुत तपस्या यहाँ पर उद्धव ने की है, और वो अभी भी यहाँ पर तृण के पत्ते के रूप में निवास कर रहे हैं। आवाज आ रही क्या? तो यही जगह की विशेषता है, ये जगह बहुत उत्कट जगह है, साधारण जगह नहीं है। कोई भी व्यक्ति आज तक हमने इतिहास में कभी पढ़ा नहीं है, पूरे इतिहास में कभी पढ़ा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक ऊंचे पद पर है और वो तुच्छ बनने के लिए तपस्या कर रहा है। आपने पढ़ाया कहीं नर्ग संहिता में, ब्रह्मवेर पुराण में, उपनिषदों में, तंत्रों में पढ़ाया क्या किधर? ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसने अपने ऊंचे स्थान को प्राप्त किया है और उसको छोड़कर सबसे तुच्छ स्थान प्राप्त करने के लिए वो तपस्या कर रहा है वो उद्धव जी ने किया है। गोपियों के प्रेम का महात्म्य समझने के बाद में उद्धव जी ने वो काम किया है और वो पद प्राप्त भी किया है, और फिर गोपियाँ उनके सर पे चली हैं और वो अपने आप को धन्य मानते हैं उसके लिए। तो वो उद्धव जी यहाँ पर निवास कर रहे हैं तृण के पत्ते के रूप में। तो भगवान जब अंतर्धान हो गए तो भगवान ने परीक्षित महाराज को कहा था कि जब मैं जाऊँगा इस धाम को छोड़कर तब मेरी रानियाँ बड़ी व्याकुल हो जाएंगी, तो मेरी रानियों को आप ब्रज में लेके जाना, सांत्वना मिलेगी उनको। तो भगवान को जाने के बाद में उनकी इच्छा के अनुसार परीक्षित महाराज और वज्रनाभ उनके ग्रैंडसन सारे पत्नियों को लेकर यहाँ पे आ जाते हैं, ब्रज में आते हैं, जमुना जी का दर्शन करते हैं। जमुना जी भगवान की ऐसी पत्नी है जो ब्रजवासी है, पांचवी पत्नी भगवान की जमुना जी है। तो जमुना जी को देखते हैं कि इतना बंद करेंगे, बाद में करेंगे इसको।